अध्याय दो। आरंभिक काल से बौद्ध धर्म के आगमन तक जापान के आरंभिक इतिहास का पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं होता। केवल परंपराओं, दंत कथाओं, काव्य तथा धार्मिक अनुष्ठान पद्धति के कुछ अवशेषों के माध्यम से ही इसका थोड़ा बहुत परिचय मिलता है। मानव जाति विज्ञान और पुरातत्व से इस दिशा में कुछ और प्रकाश पड़ता है। आज प्राचीनतम अभिलेखों का जो लिखित रूप हमें मिलता है वह ईसा की 8वीं शताब्दी के बाद का ही है। दंत कथाओं और परंपरागत कथाओं के आधार पर जापान की धरती, वहाँ के निवासियों और राज्य के उद्भव के बारे में जो विवरण मिलते हैं उनमें विचित्र एवं असंख्य देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। इन आरंभिक शताब्दियों की पूरी कहानी काफ़ी लंबी है, परंतु इसमें सच्चे इतिहास को ढूंढने के जितने भी प्रयास किए गए हैं उनमें से बहुत कम तथ्य हाथ आ सके हैं। जापान में प्रचलित कथा के अनुसार वहाँ का सम्राट देवताओं का वंशज है और राज परिवार की श्रृंखला युगों से अटूट बनी है। जापानी गणना के अनुसार इस श्रृंखला में हिरोहितो 123वें सम्राट हैं। यह विश्वास शासक सरणी को दैवीय महत्व प्रदान करता है। पैरी के आगमन के समय सन 1853 ईस्वी में जापानियों की यह धारणा थी कि वे भी देवताओं के वंशानुयायी हैं और इसलिए अन्य जातियों से श्रेष्ठ हैं। वे अपने देश को देवताओं की भूमि कहते हैं वे अपने देश को देवताओं की भूमि कहते थे। जब धरा और स्वर्ग अलग-अलग हुए तो जापान स्वर्ग के सबसे निकट था। यद्यपि वहाँ के लोगों के मन में सम्राट के दैवीय उद्भव के विश्वास को सर्वमान्य और अटूट नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी इस मानसिक प्रवृत्ति ने जापानियों में तीव्र देशभक्ति की भावना को पोषित करने में योग दिया, जिसके लिए जापान प्रसिद्ध है। उल्लिखित विवरणों से, जिनकी पुष्टि मानव जाति विज्ञान और पुरातत्व से भी होती है, यह प्रतीत होता है कि इन द्वीपों के प्रारंभिक निवासी गुहा मानव थे। प्रथम तो उनकी विद्यमानता ही संदेहास्पद है। यदि किसी ऐसी वास्तविक मानव जाति का अस्तित्व रहा भी हो तो उसके अवशेष केवल गर्त निवास और शंबुक टीलों के रूप में ही उपलब्ध होते हैं। इसलिए वे निश्चय ही संस्कृति की अत्यधिक आदिकालीन अवस्था में रहे होंगे। पूर्णतः ऐतिहासिक आधार पर एक और शक्तिशाली आदिम जाति के अस्तित्व के बारे में पता चलता है, जो संभवतः आइनू जाति की पूर्वज रही होंगी, जो आज भी हाकाइडो क्यूराइल द्वीपों में पाई जाती है। इनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं, इनका चेहरा चपटा होता है तथा स्वभाव से ये नम्र होते हैं। इनके मूल स्थान के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। कुछ विद्वानों के मतानुसार ये लोग उत्तरी एशिया से आए थे। पहले पहल जब जापानी इन द्वीपों में प्रविष्ट हुए तो वहाँ की अधिकांश भूमि पर आदिम लोगों का आधिपत्य था। ये लोग खूंखार थे और अभी पाषाण युग में ही थे। ये लोग नरभक्षक थे, इसलिए अस्पष्ट ही उनका कोई पारिवारिक जीवन भी न था। उन्होंने अपने से अपेक्षाकृत अधिक सभ्य आक्रांताओं का कड़ा मुकाबला किया और कई शताब्दियों तक लगातार संघर्ष के बाद ही ये आक्रांता इनके पीछे खदेड़ कर इन पर काबू पा सके। उन्होंने अपने विजेताओं पर कुछ अस्थायी प्रभाव छोड़े जो मुख्यतः रक्त मिश्रण के रूप में हैं, जो उत्तरी भाग के लोगों पर सर्वाधिक दिखाई देते हैं। आज की जापानी जाति मिश्रित जाति है, जो अनेक देशांतरों से हुए सम्मिश्रण का परिणाम है। हम जापान में प्रविष्ट होने वाली सभी जातियों का निश्चयपूर्वक पता नहीं लगा सके, परंतु इसमें संदेह नहीं कि इनमें से अनेक जातियाँ विभिन्न स्रोतों से आई और अलग-अलग समय पर इन द्वीपों में प्रविष्ट हुई। ये वर्ग कभी भी पूर्ण रूप से परस्पर मिश्रित न हो सके। प्रारंभिक काल से ही दो प्रमुख वर्गों में अस्पष्ट भेद रहा। पहला अभिजात वर्ग, जिसके लोग जिस्म के छड़हरे और हल्के पीले रंग के होते हैं, और दूसरे सामान्य जन, जो शरीर से हृष्ट-पुष्ट और जिनका रंग काला होता है। महाद्वीपीय से देशांतरणों के द्वारा जो लोग इस द्वीप में आए वे प्रायः कोरिया प्रायद्वीप के मार्ग से ही आए, परंतु कुछ दक्षिण की ओर से भी प्रविष्ट हुए। यहाँ की जातियों पर मलय जातियों का भी जबरदस्त प्रभाव रहा है। जो अस्पष्ट ही कुछ तो महाद्वीप से आकर बसे लोगों के और कुछ प्रभाव दक्षिणी द्वीपों से आए लोगों के द्वारा पड़ा। सुदूर पूर्व की जातियों के उद्भव के बारे में बहुत कम ज्ञान होने से जापानियों के जातीय संबंधों के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी निर्धारित करना संभव नहीं है। यूँ जापानियों पर मांचू कोरियाई और मलय जातियों का प्रभाव प्रमुख रूप से लक्षित होता है, परंतु इसके अलावा अन्य जातियों के मिश्रण के चिन्ह भी दिखाई देते हैं। यह मिश्रण कुछ तो मंगोल जाति और कुछ चीन की जातियों से हुआ होगा तथा कुछ के बारे में अभी तक निश्चयपूर्वक कहना संभव नहीं है। जब ये जातियाँ इन द्वीपों में प्रविष्ट हुई तो जापानियों के कुछ पूर्वज उस समय कांस्य युग में और कुछ लौह युग में ही थे। ये लोग यहाँ के आदिम निवासियों की अपेक्षा जिनका यहाँ आधिपत्य था कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। यद्यपि संख्या में ये उनकी अपेक्षा काफी कम थे। जापानी राज्य की स्थापना का काल संभवतः दंत कथाओं पर आधारित 600 ईस्वी पूर्व से कई शताब्दी बाद था। इसका केंद्र यामातो में था। यहाँ क्षेत्र का विस्तार करना आसान बात न थी। अन्य जापानियों और आयनी जातियों के पूर्वजों के साथ जिन्होंने एक एक इंच भूमि के लिए दृढ़ता से संघर्ष किया, लंबे अरसे तक युद्ध करने के पश्चात ही ये क्षेत्र विस्तार के प्रयत्न में सफल हो सके। यामातो राज्य, इस छोटे से राज्य की संस्कृति जिसका केंद्र यामातो में था प्राचीन इस छोटे से राज्य की संस्कृति जिसका केंद्र यामातो में था पर्याप्त प्राचीन थी। इस समय वहाँ न तो नगरों का निर्माण हुआ था और न ही अच्छे घर बने थे। कई शताब्दियों तक या तो लेखन कला का लोगों को ज्ञान ही न था या बहुत कम लोग इसका व्यवहार करते थे। वहाँ की भूमि पर मुख्य रूप से राजाओं या उच्च वंशीय लोगों का अधिकार था। वहाँ छोटी छोटी नौकाओं के द्वार थोड़ा बहुत नौचालन होता था। मछली वहाँ का राष्ट्रीय आहार था। फिर भी संभवतः आज की अपेक्षा इसका कम प्रयोग होता था। चावल तथा अन्य अनाजों की वहाँ खेती होती थी। उन्हें विभिन्न प्रकार की सब्जियों का ज्ञान था और वे उनका उपयोग करते थे। आरंभ में जो भूमि सघन वनों से आच्छादित थी वह धीरे धीरे साफ कर दी गई और उसका स्थान खेतों ने ले लिया। सिंचाई व्यवस्था और उस समय प्रचलन हो चुका था। जंगलों में लोग शिकार खेला करते थे और शिकार उनके आहार का भाग था। वे बिना पॉलिश किए मिट्टी के पात्रों में खाना पकाते थे। वस्त्र के रूप में थोड़ा बहुत रेशम का व्यवहार होता था, परंतु सामान्यतः सन और वलकल के वस्त्रों का प्रचलन था। अभी तक यहाँ चीन के सूती वस्त्रों का प्रवेश नहीं हुआ था और उनका अभी तक उन्हें ज्ञान न था। अभी तक सिक्के का भी प्रचलन नहीं हुआ था। जिस रूप में भी व्यापार होता था वह वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। कालांतर में विकसित कला की तुलना में इस कला का कालांतर में विकसित काल कालांतर में विकसित कला की तुलना में इस काल की कला अपरिष्कृत थी। जापान के लोगों में अपने शरीर को बहुत अधिक आभूषणों से अलंकृत करने का भी रिवाज था। युद्ध में प्रयुक्त होने वाले तत्कालीन हथियारों में कलात्मक डिजाइनों का आरंभिक रूप उपलब्ध होता था। इस समय वहाँ बहुत ही कम और साधारण सी दस्तकारियाँ थीं, क्योंकि खेतों, घरों और युद्धों के लिए उपकरणों की आवश्यकता पड़ती थी। श्रमिक संघ कुशल कारीगरों को संगठित करते थे। तत्कालीन जीवन प्रधानतः कृषि तथा युद्धों पर आधारित था। वहाँ की जनसंख्या कई विभिन्न वर्गों में विभक्त थी। बेगारी की भी प्रथा थी और लगातार युद्धों के कारण गुलामी प्रथा का होना भी स्वाभाविक ही था। स्पष्ट ही उस समय कानून व्यवस्था का अभाव था और न्याय व्यवस्था अत्यधिक अभद्र और अपरिष्कृत तरीकों पर आधारित थी। अपराधी बार बार देवताओं के सामने अपने निर्दोष होने की शपथ उठाता था और उबलते हुए पानी में हाथ डालकर तथा हाथ में गर्म लोहा उठाकर अपनी निरपराधिता सिद्ध करता था। आज जो रीति रिवाज निर्दयतापूर्ण प्रतीत होते हैं वे उस समय आम थे। उनका एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है। जब किसी सरदार की मृत्यु होती थी तो उसकी कब्र में उसके साथ ही उसके नौकरों, पत्नियों, उपपत्नियों या रखैलों को भी जीवित ही दफना दिया जाता था। इन बातों में आगे चलकर संभवतः एशिया महाद्वीप के प्रभाव से कुछ परिवर्तन आ गया और जीवित व्यक्तियों का स्थान मिट्टी की प्रतिमाओं ने ग्रहण कर लिया। आरंभ से ही राज्य की नींव युद्ध पर पड़ी थी। और लंबे अरसे तक आइनू जाति तथा दक्षिण एवं पश्चिम के प्रांतों के साथ संघर्ष ने इस विशेषता को और दृढ़ किया। एशियाई पड़ोसी चीन को अपने क्षेत्र विस्तार के प्रयत्न में अधिक युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि जापानियों को अपने क्षेत्र विस्तार के प्रयत्न में एक एक इंच भूमि के लिए युद्ध करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उनकी संस्कृति का स्वरूप प्रधानतः सैन्य और कृषि जीवन पर ही आधारित रहा। चीन में सैनिकों को सामान्यतः गौण महत्व का समझा जाता रहा है। इस बुराई को वे केवल इसलिए कायम रखे हैं कि विद्वान जनों, कृषक वर्ग और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए इसका होना आवश्यक था, परंतु जापान में कुछ महत्वपूर्ण शताब्दियों को छोड़कर राज्य पर सैनिक वर्ग का ही शासन रहा है। जापान की स्थापना के समय से ही वहाँ राजसत्ता का आरंभ हो गया था, परंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि इसका जो रूप अभी कुछ समय पूर्व तक था वही इसका मौलिक रूप था। इसे क्रमिक विकास की प्रक्रिया में से गुजरना पड़ा है। आरंभ में शासक एक नेता के रूप में होता था जो युद्ध काल में विभिन्न कबीलों और परिवारों को संगठित करता था और बीच के शांति काल में इस संगठित एकता का केंद्र होता था। वहां के आदिम आदिवासियों तथा अन्य शत्रुओं के विरुद्ध लंबे अरसे तक युद्धों के कारण एकता का होना आवश्यक था और संभवतः इसी एकता के फलस्वरूप सिद्धांत रूप से उसका इन कबीलों और परिवारों पर पूर्ण नियंत्रण रहता था, परंतु व्यवहार में वहां के शासन में स्थानीय सरदारों का भी हाथ रहता था। राज्य कबीलों के एक संघ के समान था जिस पर उनका अनुवांशिक नियंत्रण रहता था। सभी सरदार वफादार नहीं होते थे, वस्तुतः दूर पश्चिम और दक्षिण के सरदार स्वतंत्र से थे, और जब कोई शक्तिशाली राजा सिंहासनारूढ़ होता था तो वे यामातो राजदरबार के प्रति ही अपनी राजनिष्ठा व्यक्त करते थे। राजा को वहाँ उच्च धर्माध्यक्ष समझा जाता था जो युद्ध अथवा शांति की घोषणा करता था। जापान के लोगों का उसके प्रति अटूट विश्वास था। 19वीं शताब्दी के महान युगांतकारी परिवर्तन के समय वहां का सम्राट पुनर्गठित जापान के एकीकरण का केंद्र बिंदु बन गया। उनका धर्म आडंबर रहित था। वहां न तो कोई अधिकृत धार्मिक संघ था, न संगठित रूप में पुरोहित व्यवसाय था, और न ही नीति शास्त्र की कोई स्पष्ट पद्धति थी। इस भूमंडल की उत्पत्ति के बारे में उनकी बड़ी ही विचित्र धारणा थी। अभी तक लोगों ने आचार व्यवहार, जीवन के रहस्यों तथा वस्तुओं के मूल उद्गम के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया था। प्रकृति की महान शक्तियों और वस्तुओं पर दैवी गुण आरोपित किए जाते थे। पूर्वजों की, विशेषतः राज परिवार के व्यक्तियों की, प्रेतात्माओं की पूजा की जाती थी। धर्म राजकीय सत्ता की आत्मा और उसका मुख्य आधार था। उनके विश्वासानुसार मनुष्य असंख्य प्रेतमाताओं से घिरा रहता है जो पेड़ों पर, चट्टानों में तथा हवा में निवास करती है। जीवों और मनुष्यों पर देवत्व का आरोपण किया जाता था। धार्मिक पूजा स्थान बहुत कम थे और उनकी वास्तुकला बहुत घटिया दर्जे की होती थी। धार्मिक कर्मकांड बहुत अधिक विस्तृत और आडंबरपूर्ण न थे। इनके द्वारा प्रधानतः प्रेतात्माओं, देवताओं और पूर्वजों की स्तुति और संतुष्टि की जाती थी तथा कर्मकांड संबंधी अपवित्रता की परिशुद्धि की जाती थी। यह परिशुद्धि आंशिक रूप से वैयक्तिक शुद्धता से संबद्ध थी जो संभवतः आज की तरह पहले भी उनकी राष्ट्रीय विशेषता रही थी। इनमें अन्य आदिम जातियों के समान कई वस्तुओं के स्पर्श को निषिद्ध समझा जाता था, उदाहरणार्थ मातृदेह और जच्चा। यही आदिम धर्म बहुत ही कम परिवर्तनों के साथ आज तक चलता आ रहा है। आरंभ में इसका कोई स्वतंत्र नाम न था, परंतु जब वहां विदेशी धर्मों का प्रवेश हुआ तो यह भी आत्मसजग हो गया और इसका नाम शिंतो धर्म रखा गया, जिसका अर्थ था देवताओं का मार्ग। वर्तमान शिंतो धर्म इसी आदिमकालीन धर्म का कई शताब्दी पश्चात का परिवर्तित रूप है। जिस साधारण संस्कृति का यहाँ वर्णन किया गया है वह कई शताब्दियों की देन है। इन शताब्दियों में कई परिवर्तन हुए और राष्ट्र प्रगति करता रहा। इन युगों का एक अत्यंत अस्पष्ट चित्र ही हम प्रस्तुत कर सकते हैं, और इस छोटी सी पुस्तक में इन युगों का केवल संक्षिप्त सा विवरण ही देना संभव हो सकेगा। चीनी सभ्यता का जापान से संपर्क। जिस समय यामातो के आसपास जापान राज्य का विकास हो रहा था, उसी समय इनके निकटवर्ती एशिया महाद्वीप में भी एक महान सभ्यता का निर्माण हो रहा था। लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से ही आज के चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में चीनियों की संख्या और उसके साम्राज्य में तेजी से वृद्धि हो रही थी, और लगभग 200 ईस्वी तक उन्होंने ऐसे दर्शन, साहित्य, कला और औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संगठन का विकास कर लिया था जो यूनान और रोम की सर्वोत्कृष्ट संस्कृतियों से किसी भी माने में कम नहीं था। कन्फ्यूशियस ने दर्शन, नीतिशास्त्र और चीन के राज्य प्रबंध कौशल पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्हीं से चीन के तथाकथित अधिकांश श्रेष्ठ साहित्य का विकास हुआ जो लेखों और सूक्तियों के रूप में है। ईसाई और बौद्ध शास्त्रों को छोड़कर विश्व के अन्य किसी भी साहित्यिक संग्रह की अपेक्षा इनका मानव जाति पर अधिक व्यापक प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक लेखन कला का संबंध है, चीन में वर्णों के रूप में इस कला ने अत्यधिक उन्नत अवस्था प्राप्त की। ये वर्ण अंशतः ध्वनि लिपि, इसमें ध्वनियों को लिखित प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अंशतः विचार लिपि और अंशतः चित्र लिपि के रूप में थे। फलस्वरूप एक साहित्यिक चीनी लिपि का उद्भव हुआ जो बहुत कम परिवर्तनों के साथ आज भी लिखित चीनी भाषा का मानक रूप है। इस काल में कृषि, उद्योग और वाणिज्य ने अत्यधिक उन्नति की और जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। निकटवर्ती महाद्वीप में विकासशील इस संस्कृति ने स्वभावतः जापान को प्रभावित किया। चीन के हान वंश के राजाओं ने कोरिया के कुछ भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, और जिस सभ्यता को ये अपने साथ लाए उसका प्रभाव यामातो राज्य पर पड़ा। इसके बाद की शताब्दियों में जापान ने चीन के राज दरबार में अपने राजदूत मंडल भेजे। अर्धसभ्य द्वीपवासियों ने अधिकांश चीनी प्रभाव को ग्रहण कर लिया। इसी समय यहाँ चीनी लिपि भी प्रचलित की गई, यद्यपि इसका प्रसार बहुत धीरे धीरे ही हुआ। राज दरबार के लोग कन्फ्यूशियसी दर्शन से भी परिचित होने लगे। कभी कभी कोरिया और चीन से कुशल कारीगर और व्यापारी बड़ी संख्या में जापान आते थे। उनका उद्देश्य जैसे तैसे वहाँ के बाजार में जो उत्साही, परिश्रमी और असभ्य जापानियों के हाथ में था अपना सिक्का जमा लेना था। जैसे बाद की शताब्दियों में पश्चिमी देशों के व्यापारियों के साथ उनकी सभ्यता का आगमन हुआ था, उसी प्रकार इनके साथ भी एक ऐसे सभ्यता आई जिसे ग्रहण करके जापानियों ने उस पर अपनी विशिष्ट छाप लगा दी। चीन और जापान के बीच कई शताब्दियों तक संपर्क बना रहा, और इसके प्रभाव में जापान और संस्कृति का धीरे धीरे विकास होता रहा। तभी कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिन्होंने कुछ ही वर्षों में जापान का कायाकल्प कर दिया। चीनी जाति का विस्तार हो रहा था, कई शताब्दियों तक यह छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थी, लेकिन एक बार फिर वहां एकता की लहर दौड़ी और इसका और अधिक विस्तार हुआ। साथ ही कला और साहित्य का विकास हुआ जिसने संपूर्ण पूर्वी एशिया को, जिसका जापान भी एक भाग था, अत्यधिक प्रभावित किया। जापान में चीन की इस संस्कृति का वाहक बौद्ध धर्म था।